नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अहमदाबाद में जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज से मुलाकात करेंगे। इसके बाद गांधीनगर के महात्मा मंदिर में द्विपक्षीय कार्यक्रम होंगे। इस दौरान श्री मोदी और श्री मर्ज भारत जर्मनी नीतिगत भागीदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। दोनों देशों के बीच इस साझेदारी के हाल में 25 वर्ष पूरे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
जर्मनी के चांसलर श्री फ्रेडरिक मर्ज की पदभार संभालने के बाद भारत की यह उनकी पहली आधिकारिक यात्रा है। महात्मा मंदिर में होने वाली द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान दोनों नेता व्यापार, निवेश, तकनीक, शिक्षा और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग को और अधिक गहरा करने पर चर्चा करेंगे। साथ ही रक्षा, सुरक्षा, विज्ञान, नवाचार और हरित विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में साझेदारी को आगे बढ़ाना भी इस वार्ता का मुख्य केंद्र होगा। अपनी यात्रा के सांस्कृतिक पड़ाव के रूप में दोनों नेता साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी जी को पुष्पांजलि अर्पण करेंगे। इसके पश्चात दोनों नेता साबरमती रिवर फ्रंट पर होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव में भी भाग लेंगे। इस बार 13 जनवरी को होने वाली रात्रि पतंगबाजी भी इस 3 दिवसीय उत्सव का मुख्य आकर्षण रहेगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
आज राष्ट्रीय युवा दिवस है। यह दिवस स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन सत्र में शामिल होंगे। श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के युवा प्रतिनिधियों सहित देश विदेश के करीब 3000 युवाओं से बातचीत भी करेंगे। चुने गए प्रतिभागी प्रधानमंत्री के समक्ष अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के लिए निबंध संग्रह जारी करेंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह 10:17 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से PSLV-C62EOSN-1 मिशन अन्वेषा का प्रक्षेपण करेगा। एक रिपोर्ट।
इस मिशन का संचालन न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड कर रहा है। ये पृथ्वी अवलोकन उपग्रह के निर्माण और प्रक्षेपण का 9वां वाणिज्यिक मिशन है। ये रॉकेट भारतीय और अन्य देशों के 15 अन्य उपग्रहों को लेकर भी जाएगा। प्रक्षेपण में PSLV-DL संस्करण का उपयोग किया जाएगा। दो ठोस स्ट्रैप ऑन मोटरों से सुसज्जित होने के कारण ये यान कई उपग्रहों को सटीक कक्षाओं में ले जाने में सक्षम है। इस मिशन का एक विशेष आकर्षण स्पेनिश स्टार्टअप द्वारा विकसित कैस्ट्रेल इनिशियल टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन है। ये भविष्य में दोबारा उपयोग वाले यान का एक लघु स्तरीय नमूना है। यह अंतिम परिचालित पेलोड होगा और इसके दक्षिण प्रशांत महासागर में नियंत्रित लैंडिंग से पहले पृथ्वी के वायुमंडल में फिर प्रवेश करने की संभावना है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव अमेरिका के वाशिंगटन में G7 की महत्वपूर्ण खनिज मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक का उद्देश्य रणनीतिक संसाधनों के लिए वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करना है। श्री वैष्णव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि विकसित भारत का दृष्टिकोण साकार करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की सुरक्षित आपूर्ति श्रृंखलाएं आवश्यक हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने विकासशील देशों को विकास की आकांक्षाओं से समझौता किए बिना नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है। श्री जोशी ने कल संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में अंतर्राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी की 16वीं बैठक में कहा कि वैश्विक ऊर्जा उपयोग के लिए अधिक निवेश और सहयोग की आवश्यकता है। श्री जोशी ने कहा कि केवल भारत को वर्ष 2030 तक लगभग $3 खरब की आवश्यकता होगी। ईरान में देशव्यापी प्रदर्शनों पर हुई कार्रवाई में मृतकों की संख्या बढ़कर 538 हो गई है। अमेरिका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ताओं से संबंधित समाचार एजेंसी ने बताया कि मृतकों में 490 प्रदर्शनकारी और 48 सुरक्षाकर्मी हैं। एजेंसी ने कहा है कि 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बागर खलीबाफ ने चेतावनी दी है कि अमरीका के ईरान पर हमला करने पर अमरीकी सेना और इसराइल उसके निशाने पर होंगे। और खेलों में भारत ने न्यूजीलैंड से पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट 4 विकेट से जीत लिया है। वडोदरा में कल रात पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पर 300 रन बनाए। जवाब में भारत ने 49 ओवर में 6 विकेट पर 306 रन बनाकर मैच जीत लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।